நாராயண 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 ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயண 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 ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண அல்லோய் 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 பூரணானம் பூரணானம் அபாராணம் சாந்தானம் கனானம் அச்சலானம் துருவானம் நித்யானம் புதஸ்வரூபம் ஜானஸ்வரூபம் ஆனந்தியானம் 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 சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஆனந்த் சந்த் கே சுன்னே கே சாத் சரீர் கே மன சந்த் கா ரோமாஞ்ச் ஹோ ஜானா சாஹியே ஓர் ஆனந்த் ஜோ பரமாத்மா கா ஸ்வரூப் ஹை உசீ கா எக்தம் தியான் ஹோ ஜானா சாஹியே. नीचे ऊपर सब जगह एक आनंद ही आनंद प्रेरित होने लगा. ये आनंद जो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान है, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह एक आनंद ही आनंद का अनुभव करे. आनंद परमात्मा के स्वरूप का ध्यान है, ये बुद्धि ग्राज्यम है. बुद्धि ग्राज्यम माने बुद्धि करके कर परमात्मा को स्वरूप जो ग्रहण करने में आवे वो आनंद में स्वरूप है. तो बुद्धि विशिष्ट परमात्मा को स्वरूप है, बुद्धि से मिले हो परमात्मा को स्वरूप. तो इस प्रकार से ध्यान करे कि हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहे. जैसे गीता अध्याय 13 श्लोक 15 के मां बतलाये गए है कि बहिरंत भूताना माचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम् दूरसंचान्तिके च तत् तत् माने हुए ब्रह्म. संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के मां परिपूर्ण है. चराचर भूत प्राणियों के बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के वहाँ समान भाव से आकाश की जो वह विज्ञान आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है. कैसा वह आनंद है? चिन्मय आनंद है, यानी बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद. इस प्रकार से समझे कि अपने शरीर के और नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के वहाँ समान भाव से वह परमात्मा आनंद के रूप में मन परिपूर्ण. इसी वास्ते उनको आनंदमय कहते हैं. कैसा वह आनंद है कि अपने आप करके परिपूर्ण होने से उसको कहते हैं कि पूर्ण आनंद. और जिसकी सीमा नहीं है इसलिए उसको कहते हैं अपार आनंद. और शांति उसको स्वरूप है इस वास्ते कहते हैं कि शांत आनंद. और वो खूब गहरा है इसलिए कहते हैं कि घन आनंद, आनंद ही आनंद. और वो कभी चलायमान नहीं रहता, सदा बना रहता है, इसी वास्ते उसको कहते हैं अचल आनंद. अरे वो वास्तव के वहाँ है, कोई कल्पना नहीं है, मानी हुई बात नहीं है, वास्तव के वहाँ है, इसलिए उसको कहते हैं ध्रुव आनंद. अरे वो सदा कायम रहता है, इसी वास्ते उसको कहते हैं कि नित्य आनंद. और उस आनंद का ज्ञान, उस आनंद को ही है इस वास्ते ज्ञान आनंद, इसीलिए उसको कहते हैं कि बोध आनंद. अरे वो सबसे श्रेष्ठ है इसलिए उसको कहते हैं परमानंद. और उससे और कोई महान नहीं है इस वास्ते कहते हैं महान आनंद. और वो सब जगह के वहाँ सम है इस वास्ते कहते हैं समानंद. और वो जड़ नहीं है इस वास्ते कहते उसको चेतनानंद. और मन के द्वारा भी उसका चिंतन नहीं होता है इस वास्ते उसको कहते हैं अचिंतानंद. बुद्धि के द्वारा ही वो समझ में आता है इस वास्ते उसको कहा बुद्धि ग्राजम. केवल एक आनंद के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए उसको कहते हैं कि उसे परमात्मा को आनंद में. ऐसा परमात्मा का स्वरूप अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के बीच के वहाँ समान भाव से थी, सदा ही नित्य असुस्थित है. और वो उस आनंद का ज्ञान भी उस आनंद को ही है. इस प्रकार के आनंद का अनुभव अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह हम अनुभव करें. तो ये आनंदमय ब्रह्म का ध्यान है, इससे प्रत्यक्ष आनंद होता है. ये बात एक प्रकार से अनुभव की हुई है. प्रकार का ध्यान करने से उसको प्रत्यक्ष आनंद होता है और वो उसको अनुभव होता है कि सब जगह आनंद परिपूर्ण हो रहा है. बारंबार से शरीर के वहाँ रोमांच होते हैं और कंपा होती है अणु से प्रसन्नता से और बड़ी भारी शांति मिलती है। इसी ध्यान के विषय के बीच के वहाँ गीता की पांचवे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं वाज सप्रसे सुसक्तात्वा विन्दतात्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय स्नुते बाज सप्रसे सुसक्तात्मा कि बाहर के पदार्थों में जिनकी आसक्ति नहीं है उस पुरुष को कहते हैं कि बाद सप्रसे सुसक्तात्मा। बाहर माने ये संसार के जितने पदार्थ हैं, सारे ब्रह्मांड के बीच के माँ जितने पदार्थ हैं, इस संसारी के पदार्थों में विषयों में आसक्ति का अतंत अभाव जिसकी आत्मा में है उस पुरुष को कहते हैं कि वह पुरुष कैसा है कि बाद सप्रसे सुसक्तात्मा बाहर के पदार्थों में आसक्ति रहित पुरुष और विन्दति आत्मनीय सुखम और जो आत्मा के मां सुख का अनुभव करता है विन्दति मन अनुभव करता है आत्मनी माने आत्मा के अंदर परमात्मा के अंदर। और कोई कोई ये भी इसको मानते हैं कि माने आत्मा को अर्थ अंतःकरण के बीच के मां उस परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान है उस आनंद में ब्रह्म का जो अंतःकरण में ध्यान है उसको भी कहते हैं कि विन्दति आत्मनि यत् सुखम यत् माने जो आत्मा के अंदर सुख है उसका अनुभव करता है। तो आत्मा सर्वस्यति हृदय भी लिया जाता है अंतःकरण भी और परमात्मा भी लिया जाता है। तो यह परमात्मा लेना और भी अच्छा है कि परमात्मा के स्वरूप के बीच के वहां जो आनंद का अनुभव करता है यानी परमात्मा आनंदमय है उस परमात्मा के स्वरूप का जो एक प्रकार से अनुभव करता है परमात्मा में सुख रूप से समझो कि परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना विन्दति आत्मनि यत् सुखम जो आनंद में परमात्मा का स्वरूप है उस आनंद में परमात्मा को आत्मा के अनुभव करता है माने अपनी आत्मा के बीच के मन उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है उस परमात्मा के स्वरूप में उस सुख रूप परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है। तो आत्मनी माने परमात्मनी यानी परमात्मा में परमात्मा का जो अनन्य स्वरूप है उस अनन्य स्वरूप का अनुभव करता है स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख मक्ष मस्तुति वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा पुरुष अक्षर सुख को प्राप्त होता है। तो अक्षर सुख का मतलब है जिस सुख का कभी खय नहीं हुए तो वो परमात्मा का स्वरूप ही है अक्षर सुख। साधन काल का जो सुख है वो तो समझो कि घटता बढ़ता रहता है किंतु जो सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जा रहा है जो परमात्मा ने प्राप्त हो जा रहा है तो परमात्मा का तो खय होता नहीं। इस वास्ते परमात्मा का जो स्वरूप है वही अक्षर सुख है उस अक्षर सुख को प्राप्त हो जाता है। कौन प्राप्त हो जाता है कि ब्रह्म योगी आत्मा पुरुष ब्रह्म योग माने ब्रह्म जो है परमात्मा योग माने उस ब्रह्म के बीच के मन जो एकता आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है उस ब्रह्म के साथ में परमात्मा के साथ में जो जीवात्मा की एकता है उसका नाम है ब्रह्म योग। उस ब्रह्म योग यानी उस ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी आत्मा युक्त है माने जिसका मन उस ब्रह्म के बीच के मन समावेश हो गया है ब्रह्म के मन जिन्हें के मन बुद्धि एकदम प्रवेश कर गए हैं उस सत्यनाम घन परमात्मा के मन जो प्रवेश कर गया है एक ही भाव हो गया है उस ब्रह्म रूप ही जिसका मन बुद्धि और उसकी आत्मा एक रूप हो गई है यानी ब्रह्म से और कोई एक प्रकार से अलग कोई चीज नहीं रही इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी स्थिति है और तुम तो उस ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान होता है और ध्यान होने के बाद के बीच के मां उसका मन जो है सो ब्रह्म तद्रूप हो जाता है, फिर उसकी बुद्धि जो है सो तद्रूप हो जाती है, और फिर वह खुद जो उस ब्रह्म के बीच के मन एक ही भाव से स्थित हो जाता है, यानी अपनी समस्त ब्रह्म में ब्रह्म रूप ही बन जाता है। ऐसे पुरुष को कहा गया है कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा, तो वह पुरुष जो है फिर उस ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म वित्त ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म देता है तो ब्रह्म ही बन जाता है। तो आनंद में ब्रह्म का ध्यान करने का ये फल होता है। फल क्या होता है कि वो फिर ब्रह्म ही बन जाता है, आनंद में ही बन जाता है, और फिर वो समझो कि आनंद में बनने के बाद वैसे आनंद का ही सदा अनुभव करता है, यानी एक प्रकार से अनुभव करता है, ये कहना भी नहीं बनता। ब्रह्म को तो अपने आप का सदा से ज्ञान है ही, बस वो एक प्रकार से ब्रह्म ही बन जाता है, परमात्मा ही बन जाता है। यही साधन गीता की 6 अध्याय के 21 और 22 के श्लोक में बतलाया गया है। सुखमा पंथिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतिन्द्रियं येति यत्र न तैयायं स्थितः चलति तत्ततः। सुखमा पंथिकं यत्तद्, जो अत्यंत सुख है जिसका कोई अंत नहीं है, माने वह आनंद ब्रह्म बुद्धि ग्राजम माने बुद्धि से ग्रहण करने में आता है, अतिंद्रियम माने इंद्रिया की वहाँ पहुंच नहीं है, यत तत माने यत माने जो ब्रह्म सुख रूप है, कैसा सुख है कि अत्यंत सुख है, वह सुख है बुद्धि से समझ में आता है और इंद्रिया की वहाँ पहुंच नहीं, मन भी इंद्रियों के शामिल है, इस वास्ते मन की भी वहाँ पहुंच नहीं। व्यक्ति यत्र यत्र माने जिस काल के मां साधक उस परमात्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव करता है, जो अत्यंत सुख है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं है, ऐसे सुख का जिस काल के मां ये साधक अनुभव करता है, फिर उस स्थिति ये विचलित नहीं होता। जब वास्तव के मन उस परमात्मा के स्वरूप का इस साधु को अनुभव हो जाता है, यानी परमात्मा को ये प्राप्त हो जाता है, साधन करते करते उस परमात्मा के स्वरूप में जब तन्मय हो जाता है, फिर उस परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, यानी उस परमात्मा के स्वरूप में सदा के वास्ते उसकी स्थिति हो जाती है। उसकी कैसी स्थिति रहती है वो आगे के श्लोक में बताया जाता है। परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा, जिस परमात्मा को पाकर, जिस विज्ञानं घन परमात्मा को पाकर, उससे अपर मन उससे और दूसरा जिस परमात्मा को, जिस आनंद में परमात्मा को पाकर उससे बढ़कर के और दूसरा कोई सुख नहीं समझता है, दूसरा और उससे बढ़कर कोई आनंद को नहीं अनुभव करता है। यंगलव द्वारा परम लाभम मनते नाधिकं ततः, जिस विज्ञानानुगम परमात्मा को पाकर के उससे बढ़कर के और कुछ भी उससे बढ़कर आनंद नहीं मानता है, जिस आनंद में परमात्मा को पाकर उस परमात्मा से बढ़कर और आनंद का अनुभव नहीं करता है, यानी आनंद को नहीं मानता है, और इसमें स्थित होना दुखे ने जिस आनंद में स्थित हुआ भारी दुखों के द्वारा भी विचलित नहीं होता है, भारी दुखों के द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर बड़ी बड़ी आपत्तियां आकर के प्राप्त होती है, किंतु वो परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता है, न स्वतः विचलित होता है और न दुखों के द्वारा विचलित किया जा सकता है। तो ये समझना चाहिए कि वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद के मां उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप से ये कभी विचलित होता नहीं और किसी भी प्रकार से विचलित दूसरे के द्वारा किया जा सकता नहीं। सदा उस परमात्मा के स्वरूप के वही एसोसिएट रहता है, तो ये उसकी कसौटी है। एक तो ये कसौटी है कि उस पूर्ण आनंद को प्राप्त होकर के उससे बढ़ करके और भी कोई आनंद है, ये इसकी भावना नष्ट हो जाती है। यानी उसको और कोई आनंद है ये एक प्रकार से भाव नहीं रहता। एक परमात्मा से बढ़ करके और कोई वस्तु है ये जो एक प्रकार से भाव नहीं होता। संसार के वहाँ जितने जो मनुष्य हैं या कोई भी है, वे सभी आनंद को चाहते हैं और आनंद की भूख लगी रहती है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद के बीच के वहाँ और आनंद की इच्छा नहीं रहती। उससे बढ़कर और कोई भी आनंद है ये उसके हृदय में भाव ऐसा नहीं होता। और दूसरी यह उसकी परीक्षा है कि उसके मन पर, बुद्धि पर, शरीर के ऊपर भारी से भारी आपत्तियां करके प्राप्त हुए, या उसको आग में झोंक दिया जा, या उसको शस्त्र से काटा जा, उसके शरीर को शस्त्र से काटा जा, या संसार के वहाँ बड़ी भारी आपत्ति आकर के प्राप्त हुए, तो भी वो अपने उस परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, उसी में नित्य स्थित रहता है। उस आनंद में परमात्मा में स्थित होकर के वो खुद आनंद में ही बन जाता है। इसके लिए हम लोगों को हर वक्त उसे आनंद में परमात्मा के मन मग्न रहना चाहिए। जैसे बताया, यो अंतर सुख अंतराराम है तथा अंतर ज्योति रेवी है, से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदि गच्छति। जो अंत माने आत्मा, आत्मा में ही जो सुख वाला है, यानी उस परमात्मा का जो स्वरूप आनंद में है, उस आनंद में परमात्मा को ही अनुभव करने वाला है। हर वक्त उस परमात्मा को ही अनुभव करता रहता है। बाहर के पदार्थों के बीच के मां सुख का अत्यंत अभाव है, इस बात को समझ करके जो ब्रह्म, जो परमात्मा है, वही सबकी आत्मा है। इस वास्ते उस परमात्मा ने, माने उस आत्म स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है, उसको कहते हैं कि अंत सुख। अंत माने उस परमात्मा में, आत्मा में सुख अनुभव करने वाला अंतराराम है। बारंबार उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप की जो आवृत्ति करता रहता है, कि जैसे पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, इस प्रकार से थी उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप की आवृत्ति करता रहता है, यानी उस परमात्मा के स्वरूप का मनन करता रहता है, उसको कहते हैं कि आत्मा राम, उसको कहते हैं कि अंतराराम है। अंत माने आत्मा के बीच के मां आराम करने वाला, आत्मा के बीच के मां विचरने वाला, आत्मा का मनन करने वाला, आत्मा के मां रमने वाला, तो यही उस परमात्मा के स्वरूप में रमण है। उस परमात्मा के स्वरूप का ही बार बार जो अनुभव है, उसी को बार बार समझो कि मनन करता रहता है, उसको कहते हैं अंतराराम है। और अंत ज्योति, अंत माने आत्मा, तो आत्मा के मां ज्योति वाला, आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा में ज्योति वाला का यह मतलब है कि परमात्मा को ही ज्योति रूप से देखता रहता है। यानी परमात्मा जो है सो चेतन है, वह जो आनंद है सो चिन्मय है, उस आनंद में परमात्मा को चेतन स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से अनुभव करता रहता है, उसको कहते हैं अंत ज्योति। अंत माने परमात्मा, परमात्मा में ज्योति वाला, यानी ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, या ज्योति माने चिन्मय ज्योति, जग ज्योति नहीं, तो परमात्मा जो है तो ज्योति स्वरूप है, यानी वे आनंद में परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, उस आनंद में ब्रह्म को विज्ञान रूप में देखता रहता है, उसको कहते हैं कि अंत ज्योति। से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदि गच्छति, वह ब्रह्म भूत योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म भूत योगी, ब्रह्म भूत योगी क्या, ब्रह्म जो विज्ञान परमात्मा है, उस विज्ञानानंद परमात्मा के स्वरूप में जो तन्मय हो गया है, यानी मैं विज्ञानानंद परमात्मा हूँ इस प्रकार का अनुभव करता है, ब्रह्म भूतवान ब्रह्म स्वरूप अपने आप को ब्रह्म स्वरूप देख रहा है, यानी उसको ये प्रत्यक्ष की माफक अनुभव हो रहा है कि मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। वह उस ब्रह्म के बीच के मन इतना तन्मय हो गया कि उसको ऐसा प्रतीत होने लग गया कि मानो वो विज्ञानानंद परमात्मा मैं हूँ। इस प्रकार से थी जब उसको अनुभव एकदम प्रत्यक्ष की भांति होने लगता है, उसको कहते हैं कि ब्रह्म भूत। ऐसा ब्रह्म भूत योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी वास्तव के बीच के वहाँ जो निर्विशेष ब्रह्म का जो स्वरूप है, सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म, जिसकी व्याख्या की गई है कि वह ब्रह्म जो है सो सप्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप और महान और ऐसा वो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, उसे वास्तव में उसे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पहले तो साधन करता है, वो अपने दृष्टि से अपने आप को ब्रह्म रूप में देखता है, और फिर वास्तव के बीच के वहाँ वो असली जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, साधन का जो फल स्वरूप जो है, जिसको अमृत के नाम से कहा गया है, जिसको विज्ञानानंद ब्रह्म के नाम से कहा गया है, उसी का नाम यहाँ निर्वाण ब्रह्म है, माने शांतिमय ब्रह्म, यानी शांत स्वरूप। एक प्रकार से शांति ही जिसको स्वरूप है, ऐसा जो शांतिमय जो ब्रह्म है, उस विज्ञानानंद ब्रह्म को या निर्वाण ब्रह्म के नाम से कहा गया। उसी ब्रह्म को एक प्रकार से अमृत के नाम से कहा गया, गीता की 13वीं अध्याय के 12 के श्लोक में, गेयं यत तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्तुते, जो जानने के योग है उस ब्रह्म को मैं तेरे लिए कहूंगा कि जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो साधन काल के बीच के मां जो जानने में ब्रह्म का स्वरूप आता है, अपनी बुद्धि से जो ग्रहण करने में आता है, जिसको बुद्धि ग्राह्यम कहा है, वह जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसका फल है एक प्रकार से अमृत की प्राप्ति। तो अमृत के नाम से भी यहाँ उस विज्ञानानंद ब्रह्म को ही कहा गया है। तो साधन काल के मां जो ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव होता है, वो बुद्धि ग्राह्य उसको एक प्रकार से थी जानने के योग कहा गया है, और उसका जो फल है, जहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती, जहाँ मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है, उसका नाम यहाँ अमृत कहा गया है। तो गेयं यत तत्पर वक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्तु ते अनादि मत परं ब्रह्म न तत्पन्ना सदुच्यते, वो अनादि है, इसी को परम ब्रह्म कहा गया। और वास्तु के बीच के वहाँ वो अनिर्वचनीय है, वाणी की वहाँ पहुँच नहीं है, न उसको सत शब्द से कहा जा सकता है और न असत शब्द से, क्योंकि वास्तव में वो है, इस वास्ते तो असत शब्द से नहीं कहा जा सकता, और सत शब्द से थी जो बात समझ में आती है उससे वो विलक्षण है। बुद्धि के समझ में आने वाला जो सत है वो सत भी असु जड़ है, इस वास्ते सत और असत दोनों से वो पर है। उसी ब्रह्म को इस श्लोक में समझा है, उसी को लक्ष्य कर करके और ये ध्यान की बात बतलाई गई इसी 13वीं अध्याय के 15 के श्लोक में जो आरंभ किया गया था। बहिरंतस्य भूतानां अमतरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदधिज्ञेयं दूरस्थं कान्ति केचित्। वे परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर जितने जो भूत प्राणी है उन सब के बाहर भीतर में वे विज्ञानानंद परमात्मा परिपूर्ण है। सूक्ष्म होने के कारण से अभिज्ञ है, जानने में नहीं आता है। सूक्ष्म होने के कारण से वह जानने के वहां नहीं आता है। दूरसंग चांति के सब और वह परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक समझना कि वहां संभाव से परिपूर्ण है, और जो कुछ चराचर पदार्थ है वो भी सब परमात्मा को ही स्वरूप है। संपूर्ण भूत प्राणियों के स्थावर जंगम प्राणियों के बाहर और भीतर भी वह परमात्मा विज्ञानानुगम रूप से परिपूर्ण है, और चर और अचर जो प्राणी हैं वे भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, चराचर भी वो परमात्मा ही है, जो भी कुछ है सब परमात्मा ही है। बहुनांग जन्मांग के ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ हुआ सब विज्ञानानुगम परमात्मा ही है, यानी वासुदेव ही है। सब जगह के बीच के मध्य विज्ञानानुगम रूप से बात करें उसका नाम है वासुदेव। तो ऐसा जो निर्गुण निराकार विज्ञानानुगम परमात्मा ही एक प्रकार से थी है, उसके सवार कुछ नहीं है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब इस प्रकार से थी अनुभव करता है कि जो भी कुछ वासुदेव ही है, यानी एक विज्ञानानुगम परमात्मा ही है, तो वह उस कोटि का महात्मा पुरुष है। तो उसकी जो स्थिति है वो है सो उससे उच्च कोटि की स्थिति है, उसका फल उस विज्ञानानुगम परमात्मा की प्राप्ति है। तो वस्तु से थी जो भी कुछ हुए सब परमात्मा ही है, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक उस परमात्मा से अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है। कि जो कुछ है उसे विज्ञानानुगम परमात्मा का संकल्प है, वो संकल्प है तो उसका स्वरूप ही है। इसलिए ये जो भी कुछ है परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से थी जो एक परमात्मा का ही स्वरूप को अनुभव करता है दूर से दूर और नजदीक से नजदीक, उसे विज्ञानानुगम परमात्मा में जिनकी श्रद्धा है विश्वास है, उसके लिए तो वो नजदीक से नजदीक है। परमात्मा में जिनकी श्रद्धा नहीं है उसके लिए वो परमात्मा दूर से दूर है। देश काल और वस्तु से भी वो परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। देश से दूर से दूर और नजदीक से नजदीक कैसे? ये जो पृथ्वी जिस पर हम लोग बैठे हैं, ये जो पृथ्वी देश है, इस पृथ्वी से परे जलराशि है, उसके परे तेज की राशि है, उसके परे वायुमंडल है, उसके परे आकाश है, आकाश के परे उस परमात्मा का मन है जिसको समष्टि मन कहते हैं। परमात्मा के संकल्प में ही ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, और उस मन के परे बुद्धि है। मन और अहंकार दोनों मिलकर के एक ही चीज है, या यूं कहो कि मन के परे समष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार के परे समष्टि बुद्धि। उस समष्टि बुद्धि को ही महतत्व कहते हैं। जो महतत्व है वही परमात्मा की बुद्धि है, और उस महतत्व से जो परे है वो परमात्मा की शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति। उससे जो परे है वो स्वयं परमात्मा है, विज्ञानानुगम परमात्मा है। परमात्मा की किसी एक अंश के मां यह सो प्रकृति है, या यूं समझो कि उसे के मां या प्रकृति उसके एक अंश के मां मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। किंतु सबसे परे प्रकृति है, और प्रकृति से जो परे है वो परमात्मा है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। उस परमात्मा के परे और कुछ भी नहीं, इसलिए ये कहा जाता है कि परे से परे जो परमात्मा है और नजदीक से नजदीक है। नजदीक से नजदीक कहते कि बाहर के पदार्थों से तो ये शरीर हमारे नजदीक है, और शरीर से नजदीक शरीर के भीतर के वहां जो प्राण है सूक्ष्म, वे तो हमारी आत्मा के नजदीक है, और प्राणों से नजदीक भीतर की तरफ के बीच के मां इंद्रियां है, या यूं कहिए कि इंद्रियां भी प्राण ही है, और उसके परे भीतर की तरफ के मां सो मन है, और मन के परे यानी अपने भीतर की तरफ में आत्मा से नजदीक बुद्धि है और बुद्धि से भी और नजदीक जो है इस जीवात्मा की प्रकृति है यानी स्वभाव। उस स्वभाव का जो एक प्रकार से जो अंश है वो मूल प्रकृति का ही अंश है और उस मूल प्रकृति के अंश और परे खास हमारी आत्मा है जिसको हम कहते हैं। मूल प्रकृति का अंश भी हमारा कारण शरीर है और कारण शरीर के भीतर में जो है वो इस जीवात्मा का चिन्मय स्वरूप है और उसके परे भीतर की तरफ में और कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा से लेकर के परमात्मा तक बीच का जो कुछ ये दृश्य वर्ग है ये प्रकृति का ही कार्य है, प्रकृति का ही विकार है, प्रकृति का ये पसारा है या जो कुछ है ये प्रकृति ही एक इस विकार रूप के मां स्थित है और वो एक प्रकार से वास्तव के बीच के मां मानी हुई है। इसलिए यहाँ से लेकर वहाँ तक एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो नजदीक से नजदीक और दूर से दूर और बीच में भी परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे एक घड़े का आकाश है तो घड़े के भीतर में आकाश और बाहर में भी आकाश, तो घटाकाश की जो तो आत्मा और महाकाश की जो परमात्मा और घट के स्थान के मां प्रकृति, प्रकृति का कार्य, प्रकृति और प्रकृति का जो विकार है ये तो समझो घट की जो है और घड़े के आकाश की जो आत्मा है और महाकाश की जो परमात्मा है। तो नजदीक से नजदीक आत्मा के नजदीक से नजदीक अपना स्वरूप है और दूर से दूर ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म का अंश होने से थी ये सुब्रह्म ही है। तो वे सच्चिदानंद परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक देश की दृष्टि से वे परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है और घट के कपाल के मां भी आकाश व्यापक है। इस प्रकार से इस प्रकृति के अंदर वो परमात्मा व्यापक है। इसलिए एक परमात्मा के स्वर दूसरी वस्तु नहीं। इसी प्रकार से थी समझो कि वस्तु से थी जो भी कुछ हुए परमात्मा ही है। ये बात आपको बतला दी थी कि बहुनांग जन्मनामंग के ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव स्वनिति सम आत्मा सुदुर्लभ है। इसे सातवें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या में और इसी प्रकार से काल करके भी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। भूत भविष्य वर्तमान ये जो तीन काल है ये बुद्धि के अंतर्गत है। तो इस बुद्धि के अंतर्गत जो काल है इसमें भी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। नजदीक से नजदीक जो वर्तमान जो काल है वो नजदीक से नजदीक है। तो वर्तमान काल के में परमात्मा नित्य है, सदा है और दूर से दूर भूतकाल और भविष्य काल है। तो परमात्मा शुरू से ही है। उसी के बीच के मां समझो की हजारों ब्रह्म हो करके चले गए, इस वास्ते वो अनादि है और ये जितने ब्रह्म ये सब आदि हुए। तो अनादि होने के कारण से जिसकी आदि है ही नहीं और वो सबका आदि है, इसलिए एक प्रकार से वो अपने भविष्य में भी ऐसे ही जैसे भूत के में अनादि है ऐसे भविष्य के बीच के में भी वो सदा ही रहेगा। भविष्य में भी हजारों ब्रह्म होकर के चले जाएंगे तभी परमात्मा तो रहेंगे ही। इस वास्ते काल करके भी परमात्मा अनादि और नित्य होने के कारण से थी काल करके वो दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। तो वे परमात्मा समझो की देश करके काल करके बच्चों करके दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। अर्थात एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। एक विज्ञानानंद परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु ने हुई न है। इस प्रकार से थी उस विज्ञानानंद परमात्मा का ध्यान तो निरंतर करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अन्नोय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद சாந்தானம் கனானம் அச்சலானம் துருவானம் நித்யானம் புதஸ்ரூபம் ஞானஸ்ரூபம் ஆனந்தியானம் 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 சாந்தி சாந்தி சாந்தி.